दूसरी तरफ मॉल से शॉपिंग करने के बाद आशिका घर पहुंची, तो वहां रचित पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आशिका की सिक्योरिटी गार्ड सनी और करण उसके साथ थे। आशिका के घर में घुसते ही रचित ने पूछा, अभिमान ने मुझे बताया कि तुम घर से ही सारे काम करने वाली हो, सिक्योरिटी गार्ड क्या मिल गई? तुम तो बाहर घूमने लग गई, ऑफिस भी तो आ सकती थी ना। आशिका ने उसे देखकर आई रोल की और कहा, क्योंकि तुम्हारे बॉस ने मुझे खुद कहा था कि मैं घर से काम कर सकती हूँ, वरना मेरा तो यहाँ रहने तक का मूड नहीं था। फॉरगेट इट, मुझे जो चाहिए था वो लाए हो ना। और मिस्टर राजवंश कहाँ है? उन्होंने कहा था कि वो इस मीटिंग में आने वाले हैं। अभिमान आज ऑफिस नहीं आया था और उसका कारण भी उसने रचित को बता दिया था। राघव और रचित भी ये बात जानकर बहुत हैरान हुए थे कि इतने सालों बाद आकाश वापस लौट आया है। अभिमान का जिक्र होने पर रचित के चेहरे पर हल्की मायूसी के भाव उभर आए थे। वो कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगा, रचित बोला, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। कुछ दिनों के लिए? उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ आज रात नहीं आ पाएंगे, फिर बीच में कुछ दिन कहाँ से आ गए? आशिका ने भौहें उठाकर पूछा। हाँ, क्योंकि उसके दादा वापस आ गए हैं। आई डोंट नो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, पर उसका बाप दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। उसने उसकी मॉम को छोड़ दिया और फिर न जाने अब किन किन लड़कियों के साथ घूम रहा है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि थोड़े दिन पहले तो उसका बाप किसी लड़की से शादी करने जा रहा था। अभिमान जैसी लाइफ भगवान दुश्मनों को भी न दे, उसकी माँ ने और उसने काफ़ी कुछ झेला है। रचित बातों ही बातों में आशिका को कुछ ज़्यादा ही बताने लगा था। उसकी आदत ऐसी ही थी, वो जल्द ही सबसे ओवर फ्रेंडली हो जाता था। आशिका चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। इन सब में उसे तृप्ति की याद आ गई, उसने भी उसे यही कहा था। आशिका के दादा ने तृप्ति को धोखा दिया और किसी और लड़की के साथ रहने लगे। उन्होंने आशिका और तृप्ति को घर से निकाल दिया था। बेहतर होगा कि हम मिस्टर राजवंश के पर्सनल लाइफ पर डिस्कशन करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं, आशिका ने उसे टोका। हाँ, मैं कौन सा उसकी पर्सनल लाइफ पर किताब लिखने बैठा हूँ। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, अभिमान की पूरी फैमिली उसके दादा का साथ दे रही है। ऊपर से वो अभिमान से उसका हक भी छीनना चाहती थी। बस यही वजह है कि वो अपनी फैमिली से बदला लेना चाहता है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, रचित ने आशिका की तरफ देखकर पूछा। वो सब तो ठीक है, क्या मिस्टर राजवंश जानते हैं कि तुमने उनकी पर्सनल लाइफ को पर्सनल नहीं छोड़ा? वैसे ये कहानी और कितने लोगों को सुनाई है, आशिका ने उसे घूरते हुए कहा। जैसे ही आशिका बोली, रचित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच में अभिमान के प्राइवेट लाइफ के बारे में काफी कुछ बता दिया था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज उसे कुछ मत बताना, समझ लो हमारी बातचीत हुई ही नहीं, रचित ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ठीक है, समझ जाऊंगी हमारी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन आगे से अपना मुंह बंद रखना, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगता है, आशिका ने सिर झटका और फिर टेक लैब में जाने लगी। रचित उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अब से अपने मुंह पर टेप लगाकर घूमूंगा, अगर गलती से भी अभिमान को पता चल गया कि मैंने ऐश को इतना सब कुछ बता दिया है तो वो तो मेरा जीना हराम कर देगा। रचित ने गहरी सांस ली और आशिका के साथ काम करने के लिए अंदर आ गया था। वहीं राजवंश हाउस में आकाश निशा से मिलने के लिए उसके फ्लोर पर जा रहा था, पर तभी उसके पास उसके असिस्टेंट मार्क का कॉल आया। तृप्ति मुंबई पहुंचने ही वाली थी। वो कोई होशियारी दिखाए उससे पहले आकाश को खुद उससे मिलना जरूरी था। फिलहाल आकाश ने निशा से बात करने के बजाय तृप्ति के पास ज्यादा जाना जरूरी समझा और वो वहीं जाने के लिए निकल गया था। उसके पीछे से अभिमान निशा के साथ उसके रूम में टाइम स्पेंड कर रहा था। शाम होने को आई थी, पूरे दिन में आकाश वहां नहीं आया, लेकिन रात के वक्त अभिमान को डिनर के लिए सिंघानिया मेंशन जाना था। वो किसी भी हाल में उसे टाल नहीं सकता था। मॉम को साथ भी नहीं लेकर जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ छोड़ा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभिमन्यु चाचू भी मेरे साथ जाने वाले हैं। ऐसे में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पर यकीन करके मैं उसे मॉम के पास छोड़ सकूं, अभिमान ने मन ही मन कहा। अभिमान उलझन में खोया हुआ बैठा था, तभी उसके पास निशा आई। निशा ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखा तो उसे होश आया। वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। इस तरह घबरा क्यों रहे हो और आज ऑफिस क्यों नहीं गए तुम? टाइम स्पेंड करने के बारे में तो मैं तुमसे कब से कंप्लेन कर रही थी, लेकिन आज तक तुमने ध्यान नहीं दिया, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो एक मिनट के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हो? निशा ने शिकायती लहजे में कहा और अभिमान के हाथ में कॉफी का कप पकड़ा दिया था। बस ऐसे ही आज मेरा आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था, अभिमान ने जवाब दिया। निशा ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। अभिमान ये सोच ही रहा था कि निशा को किसके भरोसे छोड़ा जाए कि तभी उसके पास रचित का मैसेज आया। रचित अभी भी आशिका के घर पर ही था और उसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तभी उसने मैसेज किया था। रचित और आशिका का ख्याल आते ही अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो निशा से बोला, अच्छा मॉम, क्या आज आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगी? मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ, तो रचित देख लेगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, और तुम्हें कोई काम है तो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, निशा ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया था। पर अभिमान उसकी कहाँ सुनने वाला था। आप हमेशा घर में रहती हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, चलिए आज चलते हैं बाहर। अभिमान जल्दी से उठा और उसने जबरदस्ती निशा को अपने साथ कर लिया था। अभिमान के खुद ब्लैक सूट पहना था,
और उसने निशा के लिए पिंक कलर की साड़ी निकाली थी। अभिमान ने रचित को मैसेज करके पहले ही बुला लिया था। शाम के 7 बजे के करीब अभिमान रचित से एक होटल में मिला। रचित जानता था कि अभिमान निशा को बाहर क्यों लेकर आया है, उसने पहले ही उसकी वजह उसे बता दी थी। निशा को देखते ही उसने हल्के से गले लगाया और फिर अलग होकर हंसते हुए बोला, आप पूरे दिन इस बोरिंग इंसान के साथ रहकर बोर हो गई होंगी ना, अब मैं आपको रियल एडवेंचर पर लेकर चलता हूँ। मेरे बेटे को बोरिंग मत कहो। हाँ, ये थोड़ा कम बोलता है पर मुझे इसके साथ अच्छा लगता है, निशा ने अभिमान की तरफ देखकर कहा। उसे भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता था कि उसकी बीमारी की वजह से अभिमान बंद कर रह जाता था। आज अभिमान राजवंश फैमिली के साथ रह रहा था तो उसकी एकमात्र वजह ये थी क्योंकि निशा ऐसा चाहती थी। निशा अभिमान के पास गई और उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, अपना काम बेफिक्र होकर करो, मैं जानती हूँ कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, पर ठीक है, मैं तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगी। आप कभी मेरी मुश्किलें नहीं बढ़ाती हैं मॉम, तो ऐसा कहना बंद कीजिए, मैं बस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बस मुझ पर यकीन कीजिए, अभिमान ने सीरियस टोन में कहा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, निशा ने मुस्कुराकर कहा। फिर रचित निशा को वहां से लेकर चला गया था तो वहीं अभिमान अपनी गाड़ी लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच गया था। अभी भी अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, ऊपर से वो अकेला भी था। अभिमान 10 मिनट तक अपनी गाड़ी के अंदर था कि तभी वहां पर अभिमन्यु की गाड़ी आकर रुकी। उसकी गाड़ी को देखकर अभिमान ने राहत की सांस ली। अभिमान गाड़ी से बाहर निकला और अभिमन्यु के पास जाकर बोला, मुझे लगा आप नहीं आ पाएंगे, इशिका को भी आपकी जरूरत होगी। बस 2 घंटे की बात है, फिर मैं उसके पास चला जाऊंगा, खुद को शांत रखना और मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अभिमन्यु ने उसे समझाया।
ऊपर मिस्टर आशुतोष सिंघानिया अपने कमरे की बालकनी से उन्हें देख रहे थे। जब अभिमान और अभिमन्यु एक साथ अंदर घर के दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। वहीं दूसरी तरफ इशिका अपनी टीम के साथ थी। वो आखिरी इंस्पेक्शन करने के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी की ब्रांच स्कॉट एंटरप्राइजेज में पहुंची थी। ये कंपनी मार्केट में अपने इल्लीगल एक्सपेरिमेंट और अनएथिकल वर्क के लिए बदनाम थी। इशिका वहां आना नहीं चाहती थी पर उसकी टीम के कहने पर उसे आना ही पड़ा।